भागवत सार की श्रृंखला में आठवें अध्याय पर चर्चा है, सातवें स्कंद के, जिसके श्लोक को दोहराएं। सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितम्, व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः, अदृश्यत्याद्भुतरूपमुद्वहन्, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्, सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितम्, व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः, अदृश्यत्याद्भुतरूपमुद्वहन्, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्, सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितम्, व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः, अदृश्यत्याद्भुतरूपमुद्वहन्, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्, सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितम्, सत्यम सच विधातुम सिद्ध करने के लिए निजभृत्य भाषितम अपने दास के ही शब्दों को प्रह्लाद महाराज द्वारा कहे गए शब्द की भगवान सर्वव्यापी हैं। व्याप्तिम उपस्थिति च तथा भूतेषु जीवों तथा तत्वों के मध्य अखिलेषु समस्त च तथा आत्मनः अपना अदृश्यत दिखाई पड़ा अति अत्यंत अद्भुत अद्भुत रूपम रूप को उद्वहन धारण करके स्तंभे खंभे में सभायाम सभा के भीतर न नहीं मृगम पशु न नतो मानुषम मनुष्य। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं, यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अद्भुत अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा, कहाँ तुम्हारा भगवान है, क्या वह इस खंभे में उपस्थित है, तो प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। अतएव हिरण्यकश्यपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन अकाट्य रूप से सत्य था, भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकश्यपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट दैव सिंह है या मनुष्य। प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कौन्तेय प्रतिज्ञानी ही नवे भक्तः प्रणश्यति। यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की बार बार धमकियां दे चुका था, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनका रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। खंभे से प्रकट होकर भगवान ने मानो ये कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया हो, मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख लिया कि हिरण्यकश्यपु का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य का था और न ही सिंह का कहा जा सकता था। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। सर्वशास्त्रादिपीयूषः सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्द पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते मदेक बन्धो मत्संगे मद्गुरौ मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते असाधु साधु तदायी अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णारुत्कण्ठयोऽस्फुरा. हरे कृष्ण. ये आठवां अध्याय भगवान नरसिंह देव द्वारा हिरण्यकशिपु का वध. पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को बताया कि कैसे मैंने मां के गर्भ में नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त किया और फिर उन्होंने उस ज्ञान को उन सबको बताया. तो इस अध्याय में पहले 16 श्लोकों में वर्णन है कि क्या बातचीत हुई हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद महाराज के बीच. प्रहलाद महाराज के बीच जो बातचीत हुई उसका वर्णन है. फिर 17वें श्लोक से आगे 22वें श्लोक तक भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य का वर्णन है कि कैसे भगवान प्रकट हुए. और क्योंकि जब भगवान प्रकट हुए तो फिर 23वें श्लोक से आगे वर्णन है 10 श्लोकों तक 35 श्लोक तक कि कैसे भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया. और फिर 34वें श्लोक से करीब 39वें श्लोक तक वर्णन है कि जब वध हो गया तो देवी देवताओं ने कैसे बहुत अच्छा उनका सेलिब्रेशन किया. उन्होंने उसको मनाया पर्व को कि अच्छा हुआ मर गया हिरण्यकश्यपु. और फिर 40वें श्लोक से आगे अध्याय के अंत तक देवताओं ने प्रार्थना अर्पण की है भगवान को, भगवान के सुंदर रूप को. हरेक प्रकार के देवताओं ने, ब्रह्मा जी से लेकर शिव जी इत्यादि गंधर्वों ने, किन्नरों ने, चारनरों ने, सब ने प्रार्थनाएं अर्पण की. तो ये प्रार्थनाएं हैं. इस तरह ये पूरा अध्याय बटा हुआ है. तो प्रारंभ में जब प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को सिखा दिया, प्रचार किया, तो जितने भी मित्र थे वो सब पूर्ण तरह से आश्वस्त हो गए कि हाँ, ये जो प्रहलाद कह रहा है ये सही है. ये हमारे जो षंड अमरक ये पढ़ा रहे हैं हमें शिक्षक, ये सब बकवास है, बेकार है. ये जो प्रहलाद ने कहा ये सही है, हम इसका पालन करेंगे. और सब पालन करने लगे. प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रचार करने के लिए क्या आवश्यक है. प्रहलाद महाराज ने कहा और सारे मान गए. ऐसा कैसे हुआ? सब असुर बच्चे मान गए कि हाँ ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो सही है. किसी ने विरोध नहीं किया, हालांकि उन्होंने कभी ये सिद्धांत पढ़े नहीं थे, सुने नहीं थे, भक्ति का पालन नहीं किया था, वातावरण नहीं था भक्ति का. लेकिन फिर भी वो सब बदल गए. तो कैसे बदल गए? प्रभुपाद कहते हैं ये प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्तों की शक्ति है कि जब प्रचार किया जाए तो प्रहलाद प्रभुपाद कहते हैं कि प्रचार करने के लिए सबसे पहली चीज योग्यता चाहिए, दूसरी चीज सत्य निष्ठा या प्रामाणिकता चाहिए, तीसरी चीज भक्ति में गंभीरता चाहिए कृष्ण भावनामृत के पालन में, और चौथी चीज गुरु के अधीन रहकर उनका एक तुच्छ सेवक बनकर गुरु की सेवा और गुरु की कृपा से कोई व्यक्ति प्रचार कर सकता है। तो प्रचारकों के लिए ये गुण प्रभुपाद देते हैं, योग्यता होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, भक्ति में गंभीरता होनी चाहिए और गुरु के आदेशानुसार उनको चलना चाहिए, अन्यथा प्रचार प्रभावी नहीं होगा। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि प्रह्लाद महाराज जैसे भक्त को प्रचार करना चाहिए। तो क्या क्या आवश्यकता है? योग्यता, योग्य होना चाहिए उसे। तो क्या योग्यता है एक प्रचारक की? एक प्रचारक की पहली योग्यता है कि वो अपने आप को अयोग्य माने, क्योंकि जिस दिन प्रचारक अपने आप को योग्य मानने लगेगा कि अब मैं योग्य हो गया हूं, मैं प्रचार कर सकता हूं, तो वो योग्य नहीं है। इसलिए पहली योग्यता एक प्रचारक की है कि वो अपने आप को अयोग्य माने कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये तो केवल गुरु की कृपा, परंपरा की कृपा, आचार्यों की कृपा है कि मैं कुछ बोल पा रहा हूं। इसीलिए हम लोग हर प्रवचन के पहले मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण कहने का उद्देश्य ही यही है कि प्रचारक सही भाव में आए, वो ये जाने, वो आचार्यों से, श्री कृष्ण से, महाप्रभु से, इन सब से प्रार्थना करे कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं इस विषय को, इस भागवत को समझाने में असमर्थ हूं, अयोग्य हूं, आपकी कृपा होगी तो मैं इसको समझा सकूंगा। यही भाव श्रील प्रभुपाद ने प्रकट किया जब जलदूत पर उन्होंने वो भजन लिखा भगवान के प्रति, तो उन्होंने यही कहा कि मैं तो शूद्र हूं, कोई शक्ति नहीं है, शक्ति नाही, शूद्र दीन हीन आमीश, कोनो शक्ति नाही, कोई शक्ति नहीं है मेरे अंदर, लेकिन अगर आपकी अहेतु की कृपा हो जाए तो फिर मैं सारे जगत में प्रचार कर सकता। तो ये योग्यता है प्रचारक की कि उसको अपने आप को अयोग्य मानना चाहिए और उसको ये जान लेना चाहिए कि केवल आचार्यों के द्वारा, परंपरा के द्वारा ये कृपा है कि मैं कुछ बोल पा रहा हूं, अन्यथा मेरी शक्ति नहीं। प्रचार वे करते हैं, आचार्य करते हैं, वे लोग भक्त बना, जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि मेरे गुरु महाराज ने आप सबको मेरे पास भेजा है। प्रभुपाद ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने इतने शिष्य बना दिए, वो यही कहते थे कि मेरे गुरु महाराज ने आप सबको भेजा है मेरे पास। अर्थात उनका क्या भाव था कि मेरी योग्यता नहीं है, ये जो प्रचार हो रहा है, इतने शिष्य बन रहे हैं, ये मेरे गुरु महाराज कर रहे हैं, वो भेज रहे हैं लोगों को। और ये प्रभुपाद एक स्थान पर कहते हैं कि अगर भक्त गंभीर है, भक्ति में अच्छी तरह भक्ति का पालन कर रहा है, तो भगवान अपने आप भक्तों को भेज देते हैं। तो इसीलिए ये पहली योग्यता होनी चाहिए कि प्रचारक अपने आप को अयोग्य माने और परंपरा का पालन करे, ये उसकी योग्यता है। प्रभुपाद कहते हैं एक स्थान पर, माय ओनली क्वालिफिकेशन, मेरी केवल एक ही योग्यता है और वो क्या है, मैं अपने गुरु के शब्दों को दोहरा रहा हूं, बस मेरी इतनी योग्यता है। तो ये योग्यता है प्रचारक के लिए कि एक, वो अपने आप को अयोग्य माने, कभी ये नहीं सोचे कि वो प्रचार कर रहा है, वो प्रचार कर सकता है। दूसरी चीज, वो ये जान ले कि मेरी योग्यता क्या है। दूसरी योग्यता उसकी होनी चाहिए कि वो आचार्यों का पालन करे, शब्दों को दोहराए। इसे परंपरा कहते हैं, इसे परंपरा की शुद्धता कहते हैं। परंपरा की शुद्धता तब बनी रहती है जब आचार्यों की वाणी को दोहराया जाता है, अपने मन से कोई चीज बनाई नहीं जाती, इससे परंपरा शुद्ध रहती है। तो इसीलिए परंपरा का पालन करना, अपने आप को केवल एक गुरु के जैसे, यहां पर माइक है, अब ये जो माइक है और जो स्पीकर है, ये अपने मन से कुछ बोल नहीं सकते, हम जो कह रहे हैं ये केवल उसी को बढ़ाकर मतलब प्रसार कर सकते, वो आवाज को बड़ा कर देते हैं, बस उतना ही है। इस माइक में, इस स्पीकर में ये शक्ति नहीं है कि वो अपना कुछ कह सके, वो तो केवल दोहरा रहा। तो एक अच्छे प्रचारक को आचार्यों का, गुरु का एक माइक होना चाहिए बस, कि जो वो उनसे सुनता है उसको दोहराए। इसे कहा जाता है यथारूप, एज इट इज, इसीलिए प्रभुपाद ने भगवद गीता एज इट इज, जैसी है वैसी, कोई उसमें बदलाव नहीं, कोई अपने मन की बात नहीं। हां, उसको प्रस्तुत करने के लिए उस चीज को कोई अलग तरीके से कभी कभी प्रस्तुत किया जाता है, सिद्धांत नहीं बदलना चाहिए। तो इसीलिए एक अच्छे प्रचारक को केवल अपने गुरु, अपनी परंपरा का एक माइक की तरह होना चाहिए, जो सुना बस वही बोलना, अपने मन से कुछ नहीं कहें, कुछ नया धर्म का निर्माण नहीं करें, या फिर अपनी कल्पना नहीं करें कि शायद मेरे गुरु ये कह रहे हैं लेकिन इसका अर्थ ये होगा। नहीं, जो कह रहे हैं उसको दोहराना है, बस ये योग्यता है प्रचारक की। तो ऐसी और कई योग्यताओं की चर्चा कर सकते हैं, समय कम है। तो प्रभुपाद कहते हैं योग्य होना चाहिए, दूसरा प्रामाणिक होना चाहिए, सिंसियर, उसको प्रामाणिक होना चाहिए भक्ति के प्रति, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, श्री कृष्ण की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए उसका बस एक ही भाव होना चाहिए, प्रचार में सेवा हेतु कर रहा हूं, ये मेरी सेवा है, ये प्रचार में अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं कि मैं प्रचार करूं हजारों लोग मुझे सुने, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, पंडाल हो, 20,000-25,000 लोग आए, तब तो आनंद आए प्रवचन देने का। ये गुरु की सेवा है, ये भगवान की सेवा है, इसलिए प्रामाणिक होना चाहिए उसे, सिंसियरिटी। और तीसरी चीज प्रभुपाद कहते हैं भक्ति में गंभीर होना चाहिए, भक्ति के मार्गों को, भक्ति के सिद्धांत को उसको त्यागना नहीं चाहिए। और भक्ति की गंभीरता क्या है? भक्ति की गंभीरता है कि हम जो मार्ग हमें दिया गया है शास्त्रों के द्वारा, भगवान के द्वारा, हम उसका पालन करने का पूरा पूरा प्रयास करें। गंभीरता यही है, हम पूरी तरह पालन नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम गंभीर हैं, प्रयास पूरा कर रहे हैं, ये भक्ति की गंभीरता। हम कैसे दिखाएंगे भगवान को, कैसे दिखाएंगे गुरु को हम गंभीर हैं? अपने संघर्ष के द्वारा, हम संघर्ष करें, हम प्रयास करें भक्ति के मार्ग का पूरा पालन करने के लिए, ये गंभीरता। अर्थात हम गंभीर हों उद्देश्य के प्रति भक्ति के, हम जान लें कि भक्ति हम क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये गंभीरता है। भक्ति में गंभीरता का अर्थ नहीं है कि व्यक्ति मुंह को एकदम गंभीर करके ओम शांति शांति करके बैठे, वो भक्ति की गंभीरता नहीं है। भक्ति की गंभीरता है कि वो जाने कि भक्ति का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों भक्ति कर रहा हूं, और उस उद्देश्य के प्रति गंभीर रहे। गंभीर रहे अर्थात सदैव मन में उसके ये भावना रहे, ये पता रहे उसको कि मेरा उद्देश्य ये है, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं मंदिर बना रहा हूं, मैं मैनेजमेंट कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं, उद्देश्य याद रहे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं। ये शुद्ध भक्ति है। कभी कभी हम लोग सेवा करते हुए, व्यवस्थापन करते हुए, प्रचार करते हुए इस उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे कोई बहुत बड़ा चीज करना है, मुझे इन लोगों को प्रचार करना है, मुझे ये करना है। नहीं, भक्ति की गंभीरता ये है कि मुझे ये करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इन दोनों चीजों को हमें ध्यान रखना है। हाँ, हमें करना है, हम ये नहीं कह सकते कि वो तो भगवान चाहेंगे तो अपने आप प्रचार हो जाएगा, मुझे क्या आवश्यकता है, मैं आराम से बैठूं, अपने आप आएंगे, लोग आएंगे, सब होगा। नहीं, हमें करना है, लेकिन किस लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसीलिए देखिए प्रभुपाद ने कितनी मेहनत की। अमेरिका जाने की क्या आवश्यकता थी प्रभुपाद को? क्या वो ये नहीं सोच सकते थे कि ठीक है, मैं यहीं पर बैठा रहता हूं वृंदावन में, इंटरनेशनल सोसाइटी बननी होगी, बन जाएगी, भगवान चाहेंगे तो इस्कॉन बनेगा, सारे भक्त यहीं आ जाएंगे मेरे पास। क्या ये विश्वास नहीं है? प्रभुपाद को ये विश्वास नहीं था भगवान पर कि भगवान चाहेंगे तो वैसे ही भेज देंगे? क्या जरूरत थी अमेरिका जाने की प्रभुपाद को 70 साल की उम्र में? क्या जरूरत थी इतनी चिंताओं को लेने की? मंदिरों को खरीदने में कितनी चिंताएं हुई उनको, कोर्ट केसेस करने पड़े, लड़ना पड़ा लोगों से, कितनी चिंताएं। जुहू के मंदिर के लिए क्या क्या नहीं हुआ, भक्तों ने तो अपनी जान तक को बाजी लगाई केवल मंदिर बचाने के लिए। तो क्या प्रभुपाद को विश्वास नहीं था? पूरा विश्वास था, लेकिन प्रभुपाद ये भी जानते थे कि हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए भक्ति की गंभीरता यह है कि उद्देश्य को कभी नहीं भूले, हम जो भी कर रहे हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अगर ये चीज याद है हृदय में शुद्धता बनी रहेगी, कभी हम इस भौतिक चीजों के आकर्षण में नहीं पड़ेंगे। जब हमें बहुत सारा मान सम्मान भी मिलेगा, प्रभुपाद को कितना मान सम्मान मिला, लेकिन प्रभुपाद कभी उससे बह नहीं गए। कभी ये नहीं हुआ कि आज मैं जगत गुरु हो गया हूं बस, नहीं, प्रभुपाद हमेशा नम्र सेवक बने रहे। जीवन के अंत में भी जिस समय वो अपने प्राण छोड़ रहे थे, क्या भाव था उनका, वो सबसे क्षमा मांग रहे थे। उस समय भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे हजारों शिष्य हैं, इतने मंदिर हैं, 108 मंदिर हैं, हजारों शिष्य हैं, लाखों करोड़ों रुपया आता है, कितना महान हूं मैं। वो सबसे प्रार्थना कर रहे थे, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने का प्रयास कर रहे थे कि मुझे क्षमा कर दीजिए, हो सकता है प्रचार के माध्यम में प्रचार करते करते मैंने अपराध कर दिया हो। अपने गुरु भाइयों से क्षमा मांग रहे थे कि मैंने बहुत कुछ कह दिया आपको, क्षमा कर दीजिए। ये भाव था उनका। इतने महान व्यक्ति, इतने बड़े गुरु, इतने सारे शिष्यों के जो शिष्य उनके अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने क्षमा मांगी। तो उद्देश्य को कभी नहीं भूले कि कृष्ण की प्रसन्नता के। तो ये गंभीरता है भक्ति में। दूसरी चीज गंभीरता है भक्ति में, हम नियमों का पालन करें जितनी कड़ाई से हो सके, इससे गंभीरता आती है। और साथ ही साथ प्रभुपाद समझाते हैं कि चौथी चीज गुरु के आदेशों का पालन, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया, नारद मुनि के आदेशों का पालन। तो इसीलिए ये हमारे लिए योग्यता है। तो ऐसे जब प्रचार होगा लोगों का हृदय बदलेगा। और प्रभुपाद ने करके दिखाया, यही चीजें प्रभुपाद में थी और देखिए कितने लोगों को बदल दिया। उस स्थान में जाकर प्रचार किया जहां किसी ने कृष्ण का नाम नहीं सुना था। हम लोग तो भारत में कर रहे हैं जहां हर कोई कृष्ण का नाम जानता है, प्रभुपाद को कोई नहीं जानते थे, कृष्ण को कोई नहीं जानते थे। वहां जाकर उन्होंने प्रचार किया केवल इन्हीं योग्यताओं के कारण। तो इसीलिए प्रचार इस तरह से किया जाता है। तो प्रभुपाद समझाते कि प्रहलाद महाराज ने किया, उनके सारे जितने मित्र थे वो सब मान गए। अब शंड और अमरक ने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, हमारी तो कोई बात सुन ही नहीं रहा है। और जब शंड अमरक उनको बताते तो बच्चे कहते नहीं 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 ये गलत है, दरअसल भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। अब शंड अमरक बोले पहले तो एक था नालायक, अब तो सारे के सारे नालायक हो गए, ये क्या हो गया। तो घबरा गए, उन्हें लगा कि अगर हिरण्यकश्यपु को पता चला ये तो हमारी सर कटवा देगा। तो उससे पहले ही वही खुद चले गए कि हम ही जाकर बताते हैं। तो गए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु से कहा कि ये आपका जो पुत्र है, पहले तो अकेला ही था, अब तो इसने पूरी सेना खड़ी कर ली है आपके विरुद्ध, सभी लोग अब विष्णु, सारे बच्चे विष्णु विष्णु कर रहे हैं, आप कुछ कीजिए, अब हमारे से कुछ नहीं होगा। हम ले गए थे इसे, हमने आपसे कहा था कि हम ले जाते हैं, लेकिन हमसे कुछ नहीं होगा, अब आप ही संभालिए। हिरण्यकश्यपु ने जब ये सुना तो बहुत क्रोधित हो गया, बहुत क्रोध आया उसको प्रहलाद के ऊपर। और अब उसने सोच लिया कि अब कुछ नहीं है, अब मुझे प्रहलाद को मारना ही है, बस कुछ नहीं हो सकता। बहुत देख लिया मैंने, बहुत प्रयास कर लिया, सैनिकों को बोला मारो, उसको शिक्षकों को बोला कि पढ़ाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं खुद अब इसे मारूंगा। प्रभुपाद लिखते हैं कि बस इतना उसने प्रण कर लिया और उसकी आयु समाप्त। भागवत में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करता है, महत अतिक्रमः, महत मतलब भगवान के भक्त और अतिक्रमण मतलब उनके प्रति अपराध करता है, अतिक्रमण करता है, तो क्या होता है, आयु श्रेय जितनी भी चीजें हैं, आयु श्रेय यश धर्मम, ये सब समाप्त हो जाता है उसका, उसकी आयु समाप्त हो जाती है, उसका जो उसका धन संपत्ति इत्यादि है वो समाप्त हो जाती है, फिर उसका धर्म समाप्त हो जाता है, यश समाप्त हो जाता है, जितना भी उसका भाग्य है सब समाप्त हो जाता है, भागवत कहता। क्यों? क्योंकि उसने अतिक्रम अपराध किया किसके प्रति? महत भक्तों के प्रति। और अब क्योंकि उसने सोच लिया कि अब मैं मारूंगा, प्रभुपाद कहते उसकी उम्र समाप्त, भगवान अब उसको मार ही डालेंगे। तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हो गया, उसने बुलाया प्रहलाद को, बड़े क्रोध में था, प्रहलाद ने आकर प्रणाम किया। प्रहलाद उस समय भी नम्रता का प्रदर्शन कर रहे थे, जानते थे कि अब ये मुझे मारने वाले, बड़ा क्रोध में है, प्रहलाद को कोई भय नहीं था। दरअसल कभी कभी कोई व्यक्ति बड़े क्रोध में हो और वो भी हिरण्यकश्यप जैसा व्यक्ति, तो लोग घबरा जाते सामने जाने, लेकिन प्रहलाद को कोई भय नहीं। 5 साल का बालक हिरण्यकश्यप जिसकी भ्रुकुटी हिलने से देवता घबरा जाते थे, वो जो बहुत क्रोध में है, प्रहलाद शांत खड़े हैं उसके सामने, कोई चिंता नहीं प्रहलाद को, कोई भय नहीं। ये निर्भयता कैसे आई? हिरण्यकश्यप सोचने लगा, हिरण्यकश्यप बोलने लगा कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति कहां से आती है? अरे मेरा आदेश तुम पालन नहीं कर रहे हो, ये शक्ति आई कहां से तुम्हारे अंदर? हिरण्यकश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं देवताओं को कहता हूं वो हिल जाते, वो भाग भाग कर पानी भरने लगते मेरे लिए, और ये 5 साल का बच्चा ये सुनता ही नहीं है मेरी बात, कहां से शक्ति आ रही है तुम्हें? दरअसल हिरण्यकश्यप सोच रहा था कि इतनी इतनी पावर आ कहां से गई इसके अंदर। प्रभुपाद समझाते हैं भक्त के अंदर शक्ति आती है क्योंकि भक्त वही करता है जो कृष्ण चाहते हैं, केवल कृष्ण के आदेश का पालन करता है, ये हिरण्यकश्यप वगैरह के आदेश का पालन नहीं करता भक्त, इसीलिए उसके अंदर शक्ति है और भगवान रक्षा करते हैं उसकी। कौन्तेय प्रतिज्ञानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान रक्षा करते हैं ऐसे भक्त की। तो फिर हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हो गया, पूछने लगा कि किसने तुम्हें इतनी शक्ति दे दी, ये 5 साल का बालक सुन क्यों नहीं रहा? और प्रहलाद महाराज ने कहना शुरू किया। प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे हिरण्यकश्यप, हे असुर, जहां से तुम्हारी शक्ति आ रही, तुम्हें लग रहा है कि शक्ति कहां से आ रही है, जान लो एक ही स्थान है जहां से सबको शक्ति आती है, मुझे भी आपको भी। आपको जो इतनी शक्ति आई हुई है ना, जो देवताओं को इतना आपने तंग किया हुआ है, ये भी आपको भगवान से आई है शक्ति। अब सोचिए जो भगवान का विरोधी है, शत्रु है, मारना चाहता है, उसको प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि तुम मारने की इच्छा कर रहे, शक्ति भी भगवान से ही आई है, मतलब मार नहीं सकते भगवान को। अरे जिसने शक्ति दी है तुम उसके विरुद्ध कैसे लड़ सकते हो? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सब शक्ति वहीं से आती है, और ये भगवान जो है वो सर्वत्र है, सब जगह है, सारे चीजों को नियंत्रण करते हैं भगवान। हे हिरण्यकश्यप, ये छोड़ दो आसुरी स्वभाव। देखिए प्रहलाद महाराज अब अंतिम प्रचार कर रहे हैं, अंतिम बार प्रयास कर रहे हैं उसको बचाने का। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं छोड़ो ये मानसिकता, ये आसुरी मानसिकता जिसमें तुम किसी को अपना शत्रु और किसी को मित्र मानते हो। भगवान सबके लिए समान है, सम सर्वेषु भूतेषु, सबके लिए समान है, इसलिए भगवान किसी को द्वेष नहीं करते, किसी को मित्र नहीं मानते, किसी को शत्रु नहीं मानते, सबके लिए समान है। ऐसा ही तुम्हें भी होना चाहिए, छोड़ो ये आसुरी स्वभाव, ये मित्र मानना शत्रु मानना छोड़ो। और मैं आपको बताऊं, प्रचार कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, पूर्व काल में भी ऐसे कई मूर्ख हुए हैं आपके जैसे, देखिए कोई भय नहीं। सोचिए हम लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन आप जस्ट एक थोड़ा सा विचार कीजिए, 5 साल का छोटा सा बालक खड़ा, और हिरण्यकश्यप अपने आसन पर, असुर श्रेष्ठ, असुर राज, इतना बड़ा उसका राज्य, देवता हिल जाते हैं, उसको क्या कह रहे हैं? तुम्हारे जैसे मूर्ख पहले भी बहुत हुए हैं, जिन्होंने अपनी 6 शत्रुओं को जीता नहीं, जो मन में है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जिन्होंने इन 6 शत्रुओं को नहीं जीता, सारे ब्रह्मांड को जीतने का प्रयास किया लेकिन उनको समाप्त कर दिया गया। इसलिए जीतना है, विजयी होना है, तो इन 6 शत्रुओं को जीतो। बहुत सुंदर प्रवचन है प्रहलाद महाराज का कि पूर्व काल में ऐसे कई मूर्ख हुए, मतलब सीधे ही कह रहे तुम्हारे जैसे मूर्ख तुम भी मूर्ख हो, सोच रहे हो मैंने सब जीत लिया, ये छह शत्रुओं को जीत नहीं पाए, इनको जीतने का प्रयास करो, इनको जीतो। तो जब हिरण्यकश्यपु ने ये सुना तो बहुत क्रोधित हो गए। अभी तक तो क्रोध था और बढ़ गया कि ये मुझे ही प्रचार कर रहा है। प्रभुपाद कहते हैं एक हितोपदेश का एक श्लोक कोट करते हैं जिसमें लिखा है उपदेशान ही मूर्खाना, मूर्खों को जब उपदेश दिया जाता है प्रकोपाय पकल्पते, केवल वो क्रोधित होते और कुछ होता नहीं, क्योंकि मूर्ख है, उनको इतना भी प्रचार करते हैं तो नहीं होता। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने के लिए, अभी अभी हमने देखा कि प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को प्रचार किया, और क्योंकि प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त हैं, उनके अंदर योग्यता है, गंभीरता है, वो लोग बदल गए। हिरण्यकश्यपु क्यों नहीं बदला? कितना प्रचार किया प्रहलाद महाराज ने उसको, कितना प्रयास किया, पहले भी समझाया श्रवणम कीर्तनम विष्णु तत्साधु मन्य असुरवर्य देहिनाम, सब समझा चुके हैं, फिर प्रचार कर रहे हैं। तो अगर एक शुद्ध भक्त के प्रचार से सब बदल सकते हैं, हिरण्यकश्यपु क्यों नहीं बदला? क्या हुआ ऐसा? क्या शुद्धता समाप्त हो गई थी प्रहलाद महाराज की, गंभीरता चली गई थी, योग्यता नहीं थी? तो ऐसा कैसे हुआ कि वो प्रचार इतना किया वो नहीं बदला, जो सारे जगत को बदल दिया उन्होंने? क्या कारण हिरण्यकश्यपु नहीं बदला? प्रभुपाद बताते हैं कि हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद महाराज ने इतना प्रचार किया वो बदला नहीं, उसने समझा नहीं, मूर्खों की मूर्ख है। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति केवल भोग में थी। हिरण्य कश्यपु, प्रभुपाद समझाते हैं कि ये शब्द बना है दो शब्दों से, हिरण्य यानी सोना और कश्यपु यानी बहुत अच्छा बिस्तर, मलखमल का अच्छा बिस्तर, या दूसरे शब्दों में धन और स्त्री। बिस्तर किस लिए चाहिए? स्त्री के साथ संग करने के लिए। तो धन और स्त्री, प्रभुपाद कहते हैं ये दो चीजों में जो आसक्त है वो भगवान के भक्तों का उपदेश सुनता नहीं, वो पागल नहीं कर सकता। इसलिए हिरण्य कश्यपु, हिरण्य यानी सोना और कश्यपु यानी अच्छा, दोनों का मतलब सोना है, एक वो सोना और एक दूसरा सोना, हिरण्य कश्यपु। तो कहते हैं ये कभी नहीं, और क्योंकि द्वेष करता था वो भगवान से, भगवान के भक्तों से। तो प्रश्न ये आता है कि लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज तो शक्तिशाली थे, वो आसक्त था, सब है द्वेषी था, प्रहलाद महाराज शक्तिशाली थे, फिर उसको लाभ क्यों नहीं हुआ? तो प्रभुपाद कहते हैं लाभ हुआ, सीधे नहीं हुआ, सीधे उसने नहीं सुना, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रहलाद महाराज का प्रचार प्रभावी हुआ। प्रभुपाद कहते हैं क्यों? क्योंकि इसके द्वारा और द्वेष करके, क्रोध करके उसने भगवान को आमंत्रित किया, और सारे शुद्धता का अर्थ तो यही है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि हम क्यों भक्ति कराते हैं लोगों से, कि अंत में भगवान के दर्शन हो, अंते नारायण स्मृति ही। तो सीधे नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से तो हो ही गया प्रभाव, इतना उसने क्रोध किया कि भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, और जिस व्यक्ति को भगवान प्रकट होकर मारे उसके जीवन के लिए कहना है क्या। तो इस तरह प्रहलाद महाराज ने समझाया, हिरण्यकश्यपु नहीं माने, और हिरण्यकश्यपु को अब क्रोध आ गया कि ठीक है, तुम सोचते हो कि तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारे भगवान तुम्हें बचा सकते हैं, देखता हूं मैं, हिरण्यकश्यपु कहता है, देखता हूं कि तुम्हारे स्वामी आके अब तुम्हें कैसे बचाते हैं। ये स्वामी और दास का जो संबंध है इसका आधार कृपा है। कभी भी दास स्वतंत्र होकर स्वामी नहीं बन सकता, लेकिन वही दास स्वामी की कृपा प्राप्त करके स्वामी को प्राप्त कर सकता है, अपनी इच्छा से नहीं। तो हम लोग जब भगवान के दास हैं, हम स्वतंत्र रहकर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उनकी कृपा को प्राप्त करें तब उनकी कृपा के द्वारा उनको प्राप्त कर सकते हैं। हिरण्यकश्यपु ने ये नहीं किया, लेकिन उसको प्रहलाद की कृपा प्राप्त हुई, इसीलिए भगवान आ। तो बड़े क्रोध में आ गया हिरण्यकश्यपु कि ठीक है, तुम कहते हो तुम्हारे भगवान सब जगह हैं, क्या इस खंभे में हैं? जैसे हम लोग इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे कि पूछा उन्होंने, खंभे में है तो मानो प्रहलाद महाराज ने खंभे की तरफ देखा और खंभे में से नरसिंह देव उनको ऐसे हाथ हिला के कह रहे थे, चिंता मत करो मैं हूं, बोलो सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। तो भक्त ने जो बोल दिया, उन्होंने खंभे में है बोला हाँ खंभे में है, तो भगवान खंभे में आ गए। अब सोचिए ये भगवान की कृपा है। प्रहलाद महाराज अगर बोल देते पंखे में है तो भगवान पंखे से प्रकट हो जाते। यस, उस समय पंखे लगे नहीं हुए थे शायद, जो भी होगा। तो जहां जहां भक्त ने बोल दिया, देखिए भगवान की करुणा है। कभी आपने सुना खंभे से प्रकट हुए? माता पिता नहीं स्वीकारे, भगवान के हर अवतार में उन्होंने माता पिता स्वीकारे प्रायः, लेकिन इस अवतार में सत्यम विधातुम अपने भक्त के शब्दों को सत्य करने के लिए खंभा तोड़कर आ गए। तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोध में हो गया, तलवार निकाल ली उसने और अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने मुक्के से उसने उस खंभे को तोड़ दिया। इतना शक्तिशाली था। देखिए हम लोग अगर प्रयास करें अपनी मुट्ठी से खंभे को तोड़ने का तो क्या टूटेगा, आप सब जानते हैं अच्छी तरह। तो खंभे को उसने तोड़ दिया क्रोध में आकर, और जैसे ही खंभा टूटा तो एकदम बहुत तेज आवाज हुई, इतनी आवाज ब्रह्मांड हिल गया। सारे देवता सोचने लगे अब तो हमारे सारे लोक भी समाप्त होंगे, ये हिरण्यकश्यप कुछ करने वाला है। और उसमें से भगवान का सुंदर रूप निकला, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भक्तों की निज भृत्य मतलब अपने दास अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान ने आधा नर और आधा सिंह का रूप लिया। हिरण्यकश्यप देख रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये वर्णन है कि वो भगवान के सौंदर्य को देखने लगा। देखिए भगवान से मारे जाने के लिए शुद्ध होना अनिवार्य है, और अब हिरण्यकश्यप शुद्ध हो रहा है, वो भगवान के सौंदर्य का गुणगान कर रहा, देख रहा है कितना सुंदर रूप है भगवान का। वो देखने लगा कि भगवान की आंखें लाल लाल, भगवान के दांत, भगवान का मुख, भगवान के बाल, ऐसे प्रतीत हो रहा था कि बड़ा सुंदर रूप है। और अब वो देखने लगा, भूल गया मुझे युद्ध करना है। हिरण्यकश्यप भगवान को देख रहा है, तो भक्त जय है, जय विजय का तो है तो भक्त। अब भगवान को देखा तो स्वाभाविक है उसके प्रति वो सारा प्रेम वापस आ गया, वो भूल गया कि मैं तो इन मुझे युद्ध करना है। और फिर ऐसे दर्शन करने के बाद अचानक फिर से उसकी आसुरी भगवान ने बोला बस बस बहुत हो गया, अब चलो युद्ध करो, किस लिए आया हूं मैं। तो एकदम अचानक फिर से हो गया कि ये विष्णु है मुझे मारने आया है, लेकिन मुझे कौन मार सकता है। उसके मन में आ गया वापस आसुरी स्वभाव कि मेरे मुझे कौन मार सकता है। तो सत्यम विधा तो भगवान आए। श्रीधर स्वामी जब इस श्लोक पर अपनी टीका लिखते हैं तो बताते हैं कि भगवान ने कई भक्तों के वचनों को पूरा कर दिया नरसिंह रूप लेके। पहला प्रहलाद ने कहा खंभे में है, खंभे से निकल गए। दूसरा ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हें कोई पशु नहीं मारेगा, तुम्हें कोई मनुष्य नहीं मारेगा। भगवान ने सारी जितनी भी उन्होंने कही थी कंडीशन, उन सबको वैसे रखकर मार दिया फिर भी, तो इसलिए उनके वचनों को सत्य करने। तीसरा नारद मुनि के वचनों को सत्य करने भगवान आए थे। नारद मुनि ने इंद्र से कहा था कयाधु के गर्भ में बहुत महान भक्त है, तो ये प्रकट ये बताने की कितना महान भक्त है कि इसके प्रति मैं अपराध नहीं सहन कर सकता, मैं तुरंत आ जाता हूं, मैं इंतजार नहीं करूंगा कि माता पिता से मेरा जन्म हो फिर मैं बड़ा हूं फिर जाकर वध करूं, नहीं तुरंत आ गया प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य करने के लिए। और स्वयं हिरण्यकश्यप जो उनका भक्त है जय, उसके वचनों को सत्य करने के लिए भगवान आए। क्या वचन थे, क्या हिरण्यकश्यप ने कहा था? उसने कहा था कि शायद विष्णु मुझे मार देगा, जब प्रहलाद से भय हुआ था तो प्रहलाद के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उस वचन को भी उसने मन में सोच लिया सत्य करने आए। और पांचवें चार कुमारों ने जब श्राप दिया तो भगवान ने कहा था कि बहुत हो गया थोड़ा उसको कम करो, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है तुम्हें तीन जन्म ऐसे लेने पड़ेंगे, भगवान तुम्हारा वध करेंगे। उनके वचनों को सत्य करने, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। तो ऐसे वचनों को सत्य किया, भगवान प्रकट हुए बहुत सुंदर रूप, और फिर हिरण्यकश्यप से युद्ध होने लगा।
हिरण्यकशिपु फिर आ गया, भूल गया भगवान को, मारने लगा, अपनी तलवार लेकर आकाश में उछलने लगा। भगवान ने उसको पकड़ लिया। अब ऊपर सारे देवता देख रहे हैं, बादलों के पीछे छुपकर, अभी भी सीधे सामने नहीं आया, इतना घबराते थे हिरण्यकशिपु से। वो बादलों के पीछे छुपकर देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि मान लो अगर हिरण्यकशिपु बच गया, अभी भी उनको विश्वास नहीं था, तो अगर बच गया और हम लोग खड़े होकर ताली बजा रहे होंगे कि बहुत अच्छा, और उसने देख लिया, और बचने के बाद हमारा क्या करेगा पता नहीं, इसलिए छुपकर, बादलों के पीछे छुपकर देख रहे क्या हुआ। भगवान ने पकड़ लिया उसको, सारे देवता खुश हो गए, और फिर भगवान ने छोड़ दिया हिरण्यकशिपु को छोड़ दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, मेरी शक्ति से डर गए भगवान। और हिरण्यकशिपु तो ये सोच रहा था, लेकिन देवताओं का क्या हुआ, वो तो हाय हाय करने लग गए कि अरे ये क्या हुआ, हमने तो सोचा था मार देंगे, ये क्या कर दिया। तो भगवान ने आराम से छोड़ दिया उसको। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि क्यों छोड़ दिया, उसको मूर्ख बनाने के लिए। वो मूर्खता में आ गया कि देखो मैं सोच, प्रभुपाद कहते हैं इसी तरह पापियों को, अधर्मियों को भगवान इस जगत में आनंद लेने की अनुमति देते हैं। हम लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं, अरे वो इतना पापी है, वो भक्ति नहीं करता, वो असुर है, और देखो कितना आनंद ले रहा है, उसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, इतने सारे नौकर चाकर हैं, सत्ता है, और हम लोग इतने जो भक्ति करने क्या मिलता है, खिचड़ी खाने को मिलती है, या जो भी कल तो पूड़ी मिली थी आप लोगों को, तो क्या है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान ऐसे लोगों को जो अधर्मी पापी हैं उनको ये सुविधा देते, जैसे हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया, उनको सुविधा देते, और वो व्यक्ति सोचते अब मैं स्वामी हो गया, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मूर्ख बनाते हैं भगवान, भौतिक प्रकृति और भगवान ये हमें धोखा देते हैं अगर कोई व्यक्ति ऐसे होता। तो फिर भगवान ने छोड़ दिया, हिरण्यकश्यप फिर युद्ध करने लगा। और उसके बाद जब संध्या समय हो गया, वो समय जब दिन नहीं था रात नहीं थी, सही समय, भगवान ने लिया हिरण्यकश्यप को, पकड़ा और अपनी गोद में बिठाया। देखिए प्रेम है, मारा कहां पर, गोद में रख के। गोद में किसको रखा जाता है, बालक को, प्रेम से। तो भगवान वो भी प्रकट कर रहे थे, हिरण्यकश्यप को बता रहे थे डरो नहीं, मेरा प्रेम समाप्त नहीं हुआ तुम्हारे प्रति, आज भी वही प्रेम है, इसीलिए गोद में बिठाया। जय विजय को शायद कभी भगवान ने गोद में नहीं बिठाया होगा जय विजय खड़े रहते थे ना दरवाजे पे, आप देखते मंदिरों के दरवाजे पर जय विजय, वो तो दरवाजे पे खड़े हैं, शायद भगवान ने कभी नहीं बिठाया होगा गोद में कि आओ मेरे लाल बैठो। लेकिन आज हिरण्यकश्यपु के रूप, तो हिरण्यकश्यपु जय से महान है, भगवान ने गोद में बिठाया। और गोद में बिठाकर फिर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मार पाएंगे, भगवान ने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया और उसकी हत्या कर दी, और उसकी आंतड़ियों को निकालकर भगवान ने अपने गले में डाल लिया। क्यों डाल लिया, भगवान उसकी सेवा स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि मरते समय हिरण्यकश्यपु देख रहा था भगवान को, और उसने देखा कि अरे प्रहलाद उधर खड़ा है हार लेकर तैयार, भगवान प्रकट हुए हैं, प्रहलाद मेरा बच्चा हार डाल रहा और मैं कुछ नहीं डाल रहा। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, मैं हार निकाल लेता हूं। भगवान ने हार निकाल के पहन लिया कि मैं खुद ही पहन लेता हूं। भगवान उसके सिंहासन पर बैठे जाके बाद में, पहले तो मार दिया उसको, भगवान ने वध कर दिया, हिरण्यकश्यपु मर गया, तो जितने सैनिक थे असुर उन्होंने आक्रमण कर दिया एक साथ भगवान के ऊपर, तो भगवान ने उन सबको भी केवल अपने नाखूनों से मार दिया। जब सबको मार दिया तो जाकर हिरण्यकश्यपु के सिंहासन पर बैठे। अब देखिए वो असुर जो जिस सिंहासन पर बैठता था, भगवान ने वो सिंहासन क्यों स्वीकार किया, मेरे भक्त का सिंहासन है, भगवान जानते हैं कि जय है, मेरा भक्त है, सेवा करना चाहता था कर नहीं पाया, ठीक है मैं स्वीकार करता हूं, उसके सिंहासन पर जाकर बैठे भगवान। तो उसके सिंहासन पर बैठ गए, और फिर उस समय सारे देवता जो ऊपर थे सब आ गए, उन्होंने पुष्प वर्षा करनी प्रारंभ की। हिरण्यकश्यपु मर गया, सारे देवता बड़े उनकी क्या बोलते, जान में जान आई कि हाँ चलो अब ये गया। और फिर सभी देवता आए भगवान के समक्ष और उन्होंने प्रार्थना अर्पण करनी, तो भगवान बड़े क्रोध में थे उस समय, ऐसा वर्णन है कि खून खून उनके सारे मुख पर, और जो शेर होता है ना उसके बाल होते हैं यहां से, तो वो बालों पर खून लगा हुआ है, आंतड़ी निकाल के। वैसे कर्नाटक में एक बड़े प्रसिद्ध भक्त हुए, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात लिखी इस विषय में, कि भगवान आंकड़ी क्यों निकाल रहे थे हिरण्यकश्यप की, तो वो कहते हैं कि वो इसलिए निकाल रहे थे कि उन्होंने देखा कि यहीं इसी के इस पे इसके हिरण्यकश्यप से एक प्रहलाद आया है, देखता हूं और दो तीन प्रहलाद कोई है क्या और मेरे पास वहां पर, तो वो देख रहे थे खोल के कि कहीं कोई एक दो रह गया और तो निकाल लो उसको। तो ऐसे भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, ऊपर से वर्षा हुई फूलों की और फिर सभी देवता आकर प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि आप इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, आप इस सृष्टि की रचना करते हैं, आप ही इसको चलाते हैं, आप ही संहार करते हैं, ये सब आपकी ही शक्ति से होता है। बहुत सुंदर बात ब्रह्मा जी कहते हैं कि सब आपकी शक्ति से होता है। शिव जी कहते हैं भगवान को कि ये जो आपका क्रोध है ये तो सारे ब्रह्मांड के नाश के समय होना चाहिए, अब हिरण्यकश्यप मर गया, शिव जी थोड़ा शांत कर रहे थे, अब हिरण्यकश्यप मर गया है, प्रहलाद को संभालिए। अभी प्रहलाद का नाम क्यों लिया शिव जी ने, प्रहलाद सुनते ही भगवान शांत हो जाएंगे, हाँ प्रहलाद कहाँ है, भक्त है ना। तो सब दरअसल अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा शांत करने का प्रयास कर रहे थे, भगवान शांति नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ही सब शक्तियां हैं, शिव जी ने कहा कि बस वो ये क्रोध हो गया वो तो ब्रह्मांड का नाश कर देगा, प्रहलाद की रक्षा कीजिए, हिरण्यकश्यप मर गया। भगवान शांत नहीं हुए, फिर जितने भी वहां पर उपस्थित लोग थे जैसे साधु थे, तो साधुओं ने कहा कि ये जो हिरण्यकश्यप था इसने तपस्या को बंद करा दिया था और तपस्या आपको बहुत प्रिय है भगवान। भगवान ये तीसरे स्कंद में भागवत में कहते हैं कि तपस्या मेरा हृदय है, तो आपको तपस्या बहुत प्रिय है, इसने तपस्या बंद करा दी, तपस्या से ही तो सृष्टि की रचना होती है। ये हम लोग जानते हैं कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते थे उनको कुछ पता नहीं था, भगवान ने उनको क्या कहा, तपः तपस्या करो, तो यह हिरण्यकश्यप ने बंद करा दी थी, आपने इसको मार दिया, बहुत अच्छा हुआ। फिर जो पितृ लोक के लोग थे वो लोग कहने लगे कि ये हिरण्यकश्यप के कारण जितना श्राद्ध होता था हम तक पहुंचता नहीं था, ये सब वो भी खा जाता था, हमारा हिस्सा ले लिया था, आपने मार दिया, बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद सिद्ध लोक के लोग कहने लगे कि हम लोग सिद्ध हैं, हमें सिद्धियां थी लेकिन ये हिरण्यकश्यप ने हमारी सारी सिद्धियां ले ली थी, हम कुछ नहीं कर पाते थे, आपने उसको पुनः स्थापित कर दिया। विद्याधर लोक, नाग लोक, विद्याधर वाले कहने लगे कि हमारे पास कहीं भी आने जाने की शक्ति थी ये इसने बंद करा दी। नाग लोक के लोग कहने लगे कि हमारे जो मणि थी और हमारी पत्नियों को उठा के ले गया था ये, आपने मद कर दिया, बहुत अच्छा हुआ। देखिए कितना आतंक मचाया था, अब पता चल रहा है, अभी तक तो चर्चा नहीं हुई थी, देखिए कितना ब्रह्मांड में आतंक मचाया था इसने। तो नाग लोकों के लोग कहने लगे, गंधर्व यक्ष कहने लगे, गंधर्व कहने लगे कि हम तो आपके लिए केवल नृत्य करते हैं, जीवन हमारा इसलिए है, लेकिन ये हमें नृत्य कराता था अपने लिए, इनके सामने हमें नृत्य करना पड़ता था, इतना दुष्ट असुर था ये। यक्ष कहने लगे हमारा उद्देश्य जीवन का आपकी सेवा है भगवान, लेकिन ये अपनी पालकी उठवाता था हम लोगों से कितना बड़ा आतंकवादी था, देखिए तो हम लोगों से पालकी उठाता था, ऐसे सब किया। साथ साथ वहां पर भगवान विष्णु के दूत भी आए थे भगवान के दर्शन के लिए, तो विष्णु के दूत भगवान से कहने लगे कि ये जो आपका रूप है भगवान ये आपकी कृपा है, विशेष कृपा है, और ये जिसे आपने मारा ये तो जय है, तो इसे मारा नहीं है, आपने विशेष कृपा की है इसके ऊपर, आप केवल कृपा ही कर सकते हैं। तो इस तरह ये सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की लेकिन भगवान शांत नहीं हुए। तो अब अगले अध्याय में प्रहलाद महाराज, अभी तक प्रहलाद ने प्रार्थना नहीं की, अभी सब कर रहे हैं, प्रहलाद शांत खड़े हैं, शायद प्रहलाद सोच रहे हो कर लो आप लोग प्रयास कर लो शांत करने का, तो फिर अब अगले अध्याय में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं को कहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी?